पिंकेश कुमार की आवाज़ में राजनीति विज्ञान प्रथम पत्र बीए फर्स्ट ईयर स्वतंत्रता लिबर्टी। स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन यह सर्वोच्च साध्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन। स्वतंत्रता का महत्व। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बर्टेन रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं, अतएव आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती हो उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। स्वतंत्रता का अर्थ। आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक मोह माया से मुक्ति लेने से लेते हैं और परतंत्र देश के निवासी स्वतंत्रता को स्वराज का पर्यायवाची समझते हैं, किंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के इन विविध अर्थों में से कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता, उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। और इनकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इससे दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। 1789 की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है, स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात न पहुंचे। सीले लॉस की मैकेंजी आदि भी दोनों ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। प्रोफेसर लॉस की स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबंध के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। सीले फ्रीमैन और मैकेंजी आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं की गई है उनमें स्वतंत्रता का चित्रण अनुचित प्रतिबंधों का अभाव या उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था के रूप में किया गया है और इस प्रकार ये परिभाषाएं स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं। किंतु जैसा कि गैटल ने कहा है, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। स्वतंत्रता के सकारात्मक या वास्तविक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए टीएच ग्रीन ने लिखा है, जिस प्रकार सौंदर्य क्रूरता के अभाव का नाम ही नहीं होता उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं है। आगे चलकर ग्रीन ही स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने या उपयोग करने के योग्य हो। स्वतंत्रता के इस स्वरूप की व्याख्या करते हुए लास्की ने कहा है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिनमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। उपयुक्त विवेचना के आधार पर स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं। पहला, न्यूनतम प्रतिबंध। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण। जेएस मिल। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे अधिक प्रमुख रूप से प्रतिपादन जेएस मिल के द्वारा 1859 में प्रकाशित अपने निबंध स्वतंत्रता यानी ओन लिबर्टी में किया गया है। मिल का कथन है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और वह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। यदि व्यक्ति को यह स्वाधीनता न दी जाए तो मानव जीवन का मूल लक्ष्य विफल हो जाएगा। समाज की उन्नति और विकास के लिए भी व्यक्ति को अधिकतम स्वाधीनता देना आवश्यक है। इस प्रकार मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम सीमा तक व्यक्ति को अपनी जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और वह इसे अपनाने पर बल देता है। मिल व्यक्ति स्वतंत्र की इस स्थिति का प्रबलतम समर्थक है और उसने व्यक्ति स्वतंत्र के दो पहलुओं पर बल दिया है, एक विचार स्वतंत्र और दूसरा कार्य स्वतंत्र। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए तथा राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचाराधारा या भावाभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों वरन सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। कार्य स्वतंत्र के प्रसंग में मिल मानव कार्यों को दो भागों में विभक्त करता है। पहला स्व विषयक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो। पर विषयक अदर्स रिगार्डिंग, अर्थात ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता हो। मिल का कथन है कि स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप से वरन असहिष्णु समाज बहुमत और परंपराओं के दबाव से करने के लिए भी प्रयत्नशील है। मिल व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंधों की स्थिति को स्वतंत्रता का नाम देते हुए स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। आज की परिस्थितियों में मिल किस स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, इसी कारण ऑर्नेस बार्कन टिप्पणी करते हैं, मिल हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्तियों का ही पैगंबर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को कोई सार्थक रूप प्रदान हो पाता। हेरल्ड लॉस्की के स्वतंत्रता विषयक विचार। लॉस्की ने अपने विविध रचनाओं में स्वतंत्रता के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अपनी प्रारंभिक रचनाओं यथा अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में वह नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में सामने आता है, लेकिन उत्तरकाल की रचनाओं यथा एक ग्रामर और पॉलिटिक्स 1929 और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में उसने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं जो उसे सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक बना देता है। लॉस्की अपने प्रारंभिक रचनाओं में इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, लेकिन अपनी उत्तरवर्ती रचनाओं में उसने स्वतंत्रता के तीन रूपों की ओर संकेत किया है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत जीवन अपनी इच्छानुसार व्यक्ति करने की स्थिति है और राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के मामलों में सक्रिय हो पाने की शक्ति। व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में लॉस्की आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। आर्थिक स्वतंत्रता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार रोजी कमाने का अवसर मिले और वह बेकारी से मुक्त रहे। वह आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और उद्योग में लोकतंत्र के समावेश को भी स्थान देता है। 1930 के बाद लॉस्की ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि स्वतंत्रता का विचार समानता के साथ जुड़ा हुआ है और समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी एवं अपूर्ण है। इस प्रकार लॉस्की नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों के ही प्रबल समर्थक के रूप में हमारे सामने आता है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में तो लॉस्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल रूप से पक्ष ग्रहण किया है। इस दृष्टि से लॉस्की के नाम को नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण। ग्रीन और वोशांके। वर्तमान समय में यह विचार बलवती हो रहा है कि व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंधों के अभाव मात्र से व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, अतः स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक प्रबल रूप से थॉमस हिल ग्रीन का नाम जुड़ा हुआ है। वोशांके ने ग्रीन के इन विचारों को ही अपनाया है। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित थे। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है। एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है या जुए द्वारा स्वयं अपने परिवार का विनाश करता है। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट। हस्तक्षेप का अभाव मात्र केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट से लिया जाए तो उसमें तथा श्रृंखलता में कोई अंतर न रह जाएगा। अतः स्वतंत्रता के दो लक्षण हैं। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को ही करने की सुविधा है, अर्थात उचित या विधि विहित कार्यों को करने की जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक हो। दूसरा, यह सकारात्मक होती है, अर्थात वह हस्तक्षेप का अभाव मात्र ही नहीं वरन ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है जिसमें व्यक्तित्व का विकास संपन्न हो सके। ग्रीन की स्वतंत्रता के इन दो लक्षणों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, और हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं जब एक व्यक्ति या कोई वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की बलि लेकर स्वतंत्रता का उपभोग करे। हमारे कार्य समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों से संबंधित होता है, इसलिए सामाजिक संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें निश्चित प्रकार के उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिले जिनके द्वारा व्यक्ति उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सके जो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने के योग्य हो और जिसकी प्राप्ति हम समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार ग्रीन की स्वतंत्रता का धारणा स्वतंत्रता के प्रचलित सामान्य अर्थ से भिन्न है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी अपने आप को तब स्वतंत्र समझते हैं जबकि परीक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय और परीक्षा भवन में मनमाना आचरण करने की छूट हो, किंतु ग्रीन इसे स्वतंत्रता नहीं वरन श्रृंखलता या अनुशासनहीनता मानता है। ग्रीन के मतानुसार विद्यार्थियों की स्वतंत्रता इसी में निहित है कि वे बड़े मनोयोग से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार के खेलों और व्यायाम से अपने शरीर को सुदृढ़ बनावे और चारित्रिक गुणों का विकास करें। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग की स्वतंत्रता अपनी मांगों मनमानों के लिए तोड़फोड़ हड़ताल या विध्वंसक कार्य करने में नहीं वरन उत्पादन बढ़ाकर अपने देशों को समर्थ बनाने में है। ग्रीन मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों एवं समाज का हित संपादन करना है। जो कार्य व्यक्ति के इस उद्देश्य को पूरा करे तथा व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो उन्हें करना ही स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को कुछ बुरे कार्य करने में भी क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वे कार्य आत्मा के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं, अतः इन कार्यों को उसे न करने देना ही स्वतंत्रता है। वस्तुतः इन कार्यों को करने की छूट प्राप्त होने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं वरन परतंत्र हो जाता है। ग्रीन के उपयुक्त मत को स्पष्ट करते हुए बारकर ने लिखा है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने वाली करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। दूसरा, स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावात्मक रूप। ग्रीन के पूर्वप्रती उपयोगितावादी तथा व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कानून तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते थे, और उनका विचार था कि राज्य के द्वारा ऐसे सभी कानून रद्द किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता हो। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का मत था कि व्यक्ति के नैतिक विकास तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इन विचारकों के द्वारा प्रतिबंधों या कानूनों के अभाव पर या इनके हटाए जाने पर बल दिया गया था, अतः इनकी स्वतंत्रता के विचार को नकारात्मक स्वतंत्रता या निगेटिव फ्रीडम की धारणा कहा जाता है। किंतु ग्रीन ने उपयोगितावादियों या व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं होता, अतः राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक है। ग्रीन की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है सामाजिक कल्याण में समान योगदान के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना। इसलिए कोई मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकता, न कोई दूसरा मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता है। चूंकि श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए यदि पूंजीपति और मजदूरों के संबंध में सामाजिक भलाई में स्वतंत्र योगदान देने से व्यक्ति को बाधा पड़ती है तो श्रम के बेचने पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। रोशनी और स्वच्छ वायु की कमी वाले कारखाने और अधिक काम के घंटे व्यक्ति के इस योगदान को सीमित करते हैं, इसलिए कारखानों के अस्वस्थ वातावरण को हटाने वाली, श्रम के घंटे निर्धारित करने वाली तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने वाली विधियां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती वरन व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रयोग की सुविधा देकर उसे स्वतंत्र करती है। ग्रीन के शब्दों में, हमारा आधुनिक नियमन जो श्रम शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंध रखता है और जो हमारे समझौते की स्वतंत्रता में अधिकाधिक हस्तक्षेप मालूम होता है, इस आधार पर न्यायोचित है कि राज्य का कार्य यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नैतिक अच्छाई बढ़ाना नहीं है फिर भी उन परिस्थितियों को बनाता है जिनके बिना मानवीय शक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना असंभव है। इस प्रकार ग्रीन व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज और राज्य के नियमों को आवश्यक मानता है। यही ग्रीन का सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव फ्रीडम का विचार है। बोसांके का स्वतंत्रता का सिद्धांत, बोसांकेज कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। बोसांके की स्वतंत्रता विषय धारणा पर रूसो, कांट, हीगल और ग्रीन का प्रभाव है। वह ग्रीन के ही समान सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक करता है। बोसांके की प्राकृतिक स्वतंत्रता की किसी धारणा में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें वह अनेक यातनाओं, दबावों, नियंत्रणों, दमन और पराधीनताओं के होते हुए भी कुल मिलाकर अपने आप को केवल अपने बस में होना मानता है। एक व्यक्ति जो दास नहीं है वह एक स्वतंत्र नागरिक हो यह आवश्यक नहीं है, उसकी उक्ति है। एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। भूषण के यह कथन रूसो के इस विचार के अनुकूल है जिसमें उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति सदिच्छापूर्ण राज्य का नागरिक बनकर स्वतंत्र हो जाता है। भूषांके के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी व्यवस्था और परिस्थितियों का निर्माण है जो व्यक्ति को उसकी सही सार्वभौमिक व्यक्तित्व प्रदान करती है। भूषांके इसे उच्च प्रकार की स्वतंत्रता या नैतिक स्वतंत्रता का नाम देता है। उसकी इस नैतिक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के दोनों ही पक्ष निषेधात्मक और सकारात्मक विद्यमान है, अर्थात नियंत्रण से कुछ मुक्ति भी है और कुछ कर सकने की छूट भी है। यह मुक्ति भी दूसरों से नहीं बना अपने आप की निम्नताओं से मुक्ति है। भूषांके लिखते हैं, स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं की उपलब्धि है और स्वतंत्रता की पूर्ण स्थिति वह है जिसमें हम पूर्ण रूपेण स्वयं की उपलब्धि कर लेते हैं। एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वह है जो अपने आप इच्छा करती है। तात्पर्य यह है कि यह आत्मिक शक्ति होती है जो इंद्रिया जन्य सुखों की इच्छा न करके सार्वभौमिक आत्मा की इच्छा करती है। इस प्रकार भूषांके ने ग्रीन के ही तर्क को अपनाया है। भूषांके ने यथार्थ और आदर्श यानी एक्चुअल और रियल इच्छा की शब्दावली भी ज्यों की त्यों अपना ली है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति जो कुछ भी अपनी स्वार्थपरक व इंद्रियजन्य इच्छा के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वह यथार्थ हुए भी वास्तविक यानी आदर्श इच्छा इंद्रियजन्य सुख व विलासी इच्छाओं से परे है। यह वह इच्छा या आत्मिक शक्ति होती है जिसमें अपने कल्याण के साथ सभी का कल्याण निहित होता है। इस प्रकार भूषांके सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को भावनात्मक ऊंचाइयां प्रदान करता है। स्वतंत्रता के विविध रूप। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने एक स्थान पर कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही ऐसी कोई शब्द हो जिसमें इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसे नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। मॉन्टेस्क्यू के इस कथन का कारण यह है कि राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित हैं जो प्रमुख अग्रलिखित हैं। एक, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संहितावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतया भ्रमात्मक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणामतः समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जिस समाज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है। इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका पर्याप्त महत्व है। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान है और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका सेवन केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए ही कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। इसमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उससे ही संबंधित हैं इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और अनेक बार ऐसा भी अवसर उपस्थित हो जाते हैं जबकि सामाजिक स्वास्थ्य, शालीनता और व्यवस्था के हित में व्यक्ति की भोजन संबंधी, बस संबंधी और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना पड़ता है। समाजवादी विचारधारा का आधार यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते हैं, अतः समाज के पास इन कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है, तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य है कि जिन कार्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति से हो उसके विषय में उसे पूर्ण संबंध पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्तियों की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्राप्त करना होता है। अतः स्वभाव से ही नागरिक स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किन्हीं प्रकार से स्वीकृत की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिनमें वह राज्य के अन्य समुदाय और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। साधारणतः नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक सा नहीं होता। रूस के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो पश्चिमी प्रजातंत्र के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। बस तो जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रतापूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लॉस्की के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लीकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, जिसका विस्तार से अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और चुने जाने के बाद ये शासक उसके प्रति उत्तरदायी हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, क ए मतदान देने का अधिकार, बी निर्वाचित होने का अधिकार, सी उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और डी सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इन अधिकारों से स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल प्रजातंत्रात्मक देश में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव हो सके। पांचवा, आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार के श्रम के द्वारा उसका शोषण न किया जा सको। लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी तथा अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। कुछ विचारक आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से भी लगाते हैं। उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना का अर्थ यह है कि एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं बल्कि उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी है। कुछ भी हो, उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का एक साधन भी है और मूल रूप में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं के अंत से है। छठा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्र की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि के आधार पर एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। किंतु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी दूसरे राज्यों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना भी चाहिए। सातवां, नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से लेते हैं जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। कांटे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तो, ग्रीन, बोसांके तथा कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, किंतु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। अब आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता का संबंध स्पष्ट करने के पूर्व इन दोनों का तात्पर्य समझ लेना उपयोगी होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है, अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिनमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सके या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपभोग कर सके। उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। इसका प्रथम तात्पर्य यह है संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों की भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए, और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाए तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लॉस्की के शब्दों में, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सुखी रुचि से वंचित होना पड़े। आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला नहीं वरन इसके साथ साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए। अब राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित होता है। देखिए, यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार आर्थिक समानता है। राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से निम्न तीन अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो। दूसरा, व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए ताकि वह स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सके और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सके। शिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी बढ़ जाती है, केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। तीसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक करने के लिए स्वस्थ और प्रबल प्रेस नितांत आवश्यक है। उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों के विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति व्यक्तिगत क्षेत्र के प्रति उसी समय रुचि ले सकता है जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित हो जाता है, और पंडित नेहरू के लिए कहा था, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को साधारण कार्य व्यापार से इतना अवकाश प्राप्त होना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में विचार कर सकें, और यह भी आर्थिक समानता की स्थापना से ही संभव है। वर्तमान समय में जिन राज्यों के अंतर्गत धनी और निर्धन का भेद गंभीर रूप से विद्यमान है वहां पर निर्धन व्यक्तियों के लिए न तो मताधिकार का कोई महत्व है और न ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार है। इन दोनों ही बातों के संबंध में धनी व्यक्ति निर्धन को अपनी इच्छा अनुसार दबा लेता है, और आर्थिक समानता के अभाव के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि साधारण व्यक्ति के पास अपना समान जीवन बिताने को साधन ही नहीं है तो वह शिक्षित होने का विचार कैसे कर सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता को भोग करने के प्रति नितांत असमर्थ होगा। इसी प्रकार आर्थिक समानता का हमें प्रेस और विचार एवं अभिव्यक्ति के सभी साधनों पर धनी वर्ग का अधिकार हो जाता है, और यह दैनिक वर्ग तथा इन साधनों का प्रयोग जनता का सही सही जानकार एवं ज्ञान प्रदान के लिए नहीं वरन एक प्रकार से अपने विचार दूसरों पर थोपने के लिए करता है। इस प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में धनिक वर्ग निर्धन वर्ग के जीवन पर अधिपत्य कर लेता है और निर्धन वर्ग को मनमाने तरीके से शोषण करता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है। लॉस्की ने ठीक ही कहा कि है कि यदि राज संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। उपयुक्त विवेचन से कोल ने इस कथन की सत्यता नितांत स्पष्ट की है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। लॉस्की ने भी कहा है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है। अब स्वतंत्रता और कानून के बीच संबंध। स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंधों के विचार पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर तो कुछ विद्वानों और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा गया है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। दूसरी ओर अनेक विचारकों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है, और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, कमी नहीं। प्रथम विचार का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा द्वारा किया गया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। इससे आगे चलकर वे यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का अंत हो जाना चाहिए। विलियम गॉडविन के शब्दों में, कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। इसी विचारधारा के आधार पर डाइसी ने कहा है, एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भी कानून को उच्च वर्ग के हितों का लाभ पहुंचाने का एक साधन कहा गया है, और इसी कारण वर्गविहीन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। किंतु वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान समय में तो उपयुक्त धारणा के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते वरन स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। लॉक के शब्दों में, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकता है। बिलोबी के अनुसार, जहां नियंत्रण होते हैं वही स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। उपयुक्त मत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर रिची ने कहा है, व्यक्ति के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र के बाहर हो। लॉक और प्रोफेसर रिची से आगे बढ़कर हॉकिंग ने तो यहां तक कहा है, व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उसे उतनी अधिक सीमा तक शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लॉ, बिलोबी, रिची, हॉकिंग आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार बहुत कुछ सीमा तक सही है और कानून निम्न तीन प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उनमें वृद्धि करते हैं। पहला, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। यदि समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून न हो तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और संघर्ष की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। दूसरा, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। साधारणतया वर्तमान समय में राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। इन दोनों प्रकार के कानूनों में संवैधानिक कानूनों द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत और अमेरिका आदि देशों में संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह इस संबंध में श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि राज्य इन मौलिक अधिकारों यानी संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। तीसरा, स्वतंत्रता के नागरिक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हेतु उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें उन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जनकल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और राज्य कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य द्वारा की गई शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के संबंध में कानूनी व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जन स्वास्थ्य का प्रबंध आदि कार्यों द्वारा नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान प्राप्त हो रही हैं और इस प्रकार राज्य नागरिकों को वह सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है जिसे ग्रीन ने करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता के नाम से पुकारा है। यदि राज्य सड़क पर चलने के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, मद्यपान पर रोक लगाता या अनिवार्य शिक्षा और टीके की व्यवस्था करता है, राज्य के इन कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती बल्कि उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साधारण रूप से राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं, परंतु सभी कानून स्वतंत्रता के साधक नहीं होते हैं। लेकिन राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती कि वे मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासक वर्ग अपने ही स्वार्थों को दृष्टि में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना किसी विशेष कारण के व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता सीमित करता है तो राज्य को इस कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित ही होती है। उदाहरणार्थ, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे। इस प्रकार वर्तमान समय में साम्यवादी देशों की सरकारों द्वारा साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य दलों को संगठित न होने देने और नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना न कर सकने की व्यवस्था की गई है उससे इस साम्यवादी दशा को नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं करते, परन ऐसा केवल उन्हीं कानूनों के संबंध में कहा जा सकता है जिसके संबंध में लॉस्की के शब्दों में व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूं और उनका पालन कर सकता हूं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो स्वतंत्रता का पोषण होगा और यह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। और स्वतंत्रता के संरक्षण, सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यह बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के संबंध में पूर्णतया सच है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते उनकी स्वतंत्रता को सदैव संकट बना रहता है। विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ प्रथाओं का होना आवश्यक है और वांछनीय है जो निम्न है। पहला, आदर्श कानून। व्यक्ति अपनी विभिन्न स्वतंत्रता का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती। अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर सके। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा, विशेषाधिकार का अंत। जिस समाज में कुछ व्यक्तियों, धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वहां पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वे अहम भाव के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता की भावना के कारण इन स्वतंत्रताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अंत नितांत आवश्यक है। लॉस्की के शब्दों में, यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिए गए हों तो उस सजा में जनसाधारण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा। तीसरा, लोकतंत्र या शासन। व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किंतु यदि लोकतंत्र या शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है, और शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतंत्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है। परंतु इस लोकतंत्रात्मक शासन के साथ साथ यह आवश्यक है कि जनता में भी लोकतंत्र भावना हो, अर्थात बहुमत में न्यायप्रियता और अल्पमत में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। चौथा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं, वरन राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा गया है। इस दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस आदि राज्यों के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पांचवा, स्वतंत्र न्यायालय। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, न्यायालय स्वतंत्र हो और न्यायालय के कार्यों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो। इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालयों के व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन होने पर वे शासन सत्ता के हस्तक्षेप से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त न्याय सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला मात्र बनकर रह जाता है। छठा, सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता ही है। इसके लिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा मात्र ही नहीं, वरन इसकी रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार के त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करे। इंग्लैंड के नागरिकों द्वारा तो सतत जागरूकता के कारण ही इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। कहावत भी है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य। लास्की के शब्दों में, नागरिकता की महान भावना न कि कानून की सदावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। इस संबंध में थॉमस जेफरसन के शब्द महत्वपूर्ण है कि कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहां पर जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती रहे। तथा शक्तियों का पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां एक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और उन्हें ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके। आठवां, आर्थिक न्याय। यदि हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो हमारे द्वारा जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, और यह वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक यह कैसे सोचा जा सकता है कि स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। अतः आर्थिक न्याय स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारंटी है। इसके बिना स्वतंत्रता एक ही वर्ग का हित बनकर रह जाती है। नौवां, स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाचार पत्र स्वतंत्र है तो उसके द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा रहा है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख शासन स्वतंत्र प्रेस ही है। दसवां, स्थानीय स्वशासन। नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में स्थानीय स्वशासन द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लास्की के विचार में राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत विवरण होगा, जितना अधिक विकेंद्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्वतंत्रता के संबंध में। एक, स्वतंत्रता की धारणा की पूर्ण स्पष्टता के साथ व्याख्या कीजिए। दूसरा, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इस प्रसंग में जैस मिल के विचार को विवेचना कीजिए। तीसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या आशय है, इस संबंध में थॉमस हिल ग्रीन के विचारों को विवेचना कीजिए। चौथा, स्वतंत्रता के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। पांचवा, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, कोल का कथन, इस कथन की व्याख्या कीजिए। छठा, स्वतंत्रता और कानून का पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए, यह कहना कहाँ तक सत्य है कि कानून स्वतंत्रता का रक्षक है। सातवां, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक शर्तों अथवा परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हाँ, स्वतंत्रता चैप्टर का यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा BA प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पुखराज जैन की पुस्तक के द्वारा किया गया।